श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20 लोक संख्या 26 डेट 21 मार्च 2015 स्पीकर महामन प्रभु
हो लॉस एंजलिस को नवद्वारका कहते हैं। तो एक नव वृंदावन अमेरिका में श्री प्रभुपाद जी ने फार्म कम्युनिटी स्टार्ट की थी और वहाँ में प्रभुपाद जी के अनुयायियों ने एक बहुत भव्य महल जैसा भवन प्रभुपाद जी को समर्पण करना चाहा। उसका नाम है प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड। प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड यानी कि प्रभुपाद का स्वर्णीय महल, ये वहाँ के भक्तों की श्रद्धा का समर्पण था। तो जैसे ही ये प्रभुपाद जी का भवन तैयार होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था, तो प्रभुपाद जी के भक्तों ने अनुयायियों ने दिखाना चाहा प्रभुपाद जी को, ये सब तैयारियां हो गई हैं, आपका भवन अभी तैयार है, हम एक चीज़ चाहेंगे, हमारी एक बहुत हार्दिक इच्छा है कि आपका जो भवन है वो ये इलेक्ट्रिसिटी से प्रकाशित होने के बजाय रत्नों से प्रकाशित हो, रत्नों से उज्वाला हो। द्वापर युग में हम दसवें स्कंद में पढ़ते हैं श्री कृष्ण जी का महल सुधर्म जो था, असेंबली सभाघर, वो उन दिनों इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, स्वर्ण ये रत्नों से उज्वला होता था। तो प्रभुपाद जी से भक्तों ने ऐसा पूछा कि प्रभुपाद जी क्या ये संभव है, हमारी बहुत इच्छा है कि आपका ये भवन रत्नों से उज्ज्वलित करें, प्रकाशित करें, ना कि ये इलेक्ट्रिसिटी से। कभी कभी ये इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करती या शॉक भी देती है, और उससे अच्छा तो रत्न है। तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा वास्तव में मेरे भक्त ही तो रत्न है। मेरे भक्तों के द्वारा ही मेरा भवन उज्ज्वलित प्रकाशित होगा, और खाली मेरा भवन ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इनके द्वारा प्रकाशित होगा। प्रभुपाद जी हरे भक्त को एक रत्न जैसा मानते थे, वैसे ही श्री कृष्ण जी भी हर एक भक्त को एक बहुत अमूल्य रत्न जैसा मानते हैं। जैसे कि किसी के हाथ में बहुत अमूल्य रत्न हो, आपके अगर हाथ में एक हीरा या कोई बहुत अमूल्य रत्न हो तो आप उसका बहुत ध्यान रखेंगे, उसके ऊपर कोई धूल ना पड़ जाए, उसको अच्छी तरह से चमकाएंगे, और सबसे ज़्यादा उसको एकदम सुरक्षित रखेंगे, कोई चोरी नहीं कर ले। तो वैसे ही सब भक्त जो हैं भगवान कृष्ण के हाथ में जैसे एक रत्न की अमूल्य रत्न है, और कृष्ण हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। आगे इस सत्र में चैतन्य महाप्रभु जी और उनके भक्तों का कैसा संघ है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से भी कहेंगे। तो आज का श्लोक दसवें स्कंद में से 20वां अध्याय और 26वां श्लोक है। धेनवो नंदगामिन्या धेनवो मंदगामिन्या उधो बारे न भूयसा
आयुर्भागवत दूता ययोर्भागवत दूता द्रुतं प्रीत्या श्रुता स्मनः देनवो मंडगामिन्या उदो भारे न भूयसा ययुर्भागवता दूता दूतं प्रीत्या स्मृता समः
गति से चलने वाली उधर अपने थनों के भारेन भार से भूयसा अत्यधिक ययु गई भगवत भगवत सॉरी भगवता भगवान द्वारा आहूता बुलाई जाने पर द्रितम शीघ्र प्रीत्या सॉरी प्रीत्या स्नेह बाश स्नुता नम स्तना स्तन या चुचुक अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
गौवों को अपने दूध से भरे थनों के भार के कारण मंद गति से चलना पड़ा, किंतु ज्यों ही भगवान ने उन्हें बुलाया वे तुरंत दौड़ पड़ी और उनके प्रति स्नेह के कारण उनके स्तन गीले हो गए। आप दोहराइए मेरे पीछे, गौवों को अपने दूध से भरे थनों के भार के कारण मंद गति से चलना पड़ा, किंतु ज्यों ही भगवान ने उन्हें बुलाया वे तुरंत दौड़ पड़ी और उनके प्रति स्नेह के कारण उनके स्तन गीले हो गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी का की टीका है, गौ नहीं धाम नई घास चरकर काफ़ी स्वस्थ हो गई और उनके थन धूल से भर गए। जब भगवान कृष्ण ने नाम ले लेकर उन्हें पुकारा तो वे स्नेहवश तुरंत उनके पास आ गईं और उनकी इस हर्षावस्था में उनके थनों से दूध बहने लगा। मुखम करोति वाचालम पंगुन लंगयते गिरिम यत्कृपा तम हम वंदे श्रीगुरुदीना तारणम परमानंद माधवम। ये बहुत सुंदर अध्याय में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन किया गया है और इन श्लोकों में आज का खास जो श्लोक है गौओं का वर्णन करते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण जी गौओं के नाम पुकारते श्यामला और कई नाम जैसे पुकारते स्नेह के साथ स्नेहवश होकर गौएं आ जाती, हालांकि उनका उनके स्तन दूध के भरे हुए से भरे हुए थे और उनको चलने में भी कठिनाई हो रही थी क्योंकि बहुत वजन था दूध का, फिर भी स्नेहवश होकर श्री कृष्ण जी के पुकारने पर ये गाँवें वहाँ में आई। यही श्री कृष्ण जी को गौएं बहुत ही प्रिय हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाया गो ब्रह्मणा हिताय जा जगत हिताय कृष्णाया गोविंदाया नमो नमः। ये बहुत सुंदर मंत्र है, नमो ब्रह्मण्य देवाया गो ब्रह्मणा हिताय च, गौओं और ब्राह्मणों का हित रक्षा करते हैं। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और हर रोज हम ब्रह्म संहिता का अध्ययन भी करते हैं, रेसिटेशन करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम्। ये भगवान की लीला है, सुरभीर सुरभीर गाय सुरभीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सदसं ब्रह्म से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जय श्री श्री राधा गिरिधारी की, जय जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की। जिस संस्कृति में गौ रक्षा होगी वहाँ बहुत ही प्रगति होगी। कहा जाता है कि भारत में गौओं की रक्षा खूब हो सकती थी जब तक ये ब्रिटिश लोग नहीं आए। उससे पहले ऐसा भी कहा गया है कि भारत में गौओं की संख्या मानव जाति की संख्या से भी अधिक थी, इतनी गाँवें थीं यहाँ, और कोई चीज़ की कमी नहीं रहती थी, क्योंकि गौ के गोबर मूत्र से जो पूरा पूरी धरती पूरी ज़मीन बहुत उपजाऊ होती थी और बहुत पोषित पदार्थ उगा करते थे। जब ये ब्रिटिश लोग आए तो इन्होंने देखा कि भारत के लोग उसमें काफ़ी तंदुरुस्त थे, क्योंकि सब शुद्ध चीज़ खाते थे, गौओं की रक्षा करते थे, इसलिए शुद्ध घी गौओं का मिलता था, शुद्ध दूध मिलता था, हर एक चीज़ में बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती थी। तो उसी समय इनका एक ब्रिटिश वालों का जो गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, तो उन्होंने सोचा कि ये भारत के लोग इतने तंदुरुस्त हैं और यहाँ में कोई चीज़ की कमी नहीं है, बहुत स्वस्थ हैं, तो इसका कारण क्या है। और इसी समय गौओं की भी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, तो कोई बीच में से लोग जो थे भारतीय संस्कृति पर द्वेष करते थे, उन्होंने ही अंदर की बात बताई कि ये भारत का ये स्थिति ऐसी है कि बहुत ही तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है और लोग सब स्वस्थ हैं, इसका कारण यह है गौओं का है, क्योंकि गौओं का मूत्र से गोबर से गाय उपजाऊ होती है और गाय के दूध से बुद्धि हमारी बनती है, घी से भी बुद्धि बनती है। सो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि जब तक यहाँ में गायों की संख्या बढ़ती रहेगी तो यहाँ में हमारे को ब्रिटिश लोगों को ये भारत के ऊपर कब्जा पाना असंभव होगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत सक्षम हैं अपने आप में ही, और गायों पर निर्भर रहने से सब कुछ उपलब्धियाँ हैं, सब उपलब्धियाँ हैं। सो रॉबर्ट क्लाइव ने ही पहला कसाई घर यहाँ में चालू किया इंग्लैंड में, और कसाईघर चालू करते हुए गौओं का स्लॉटर हाउस चालू किए उसने। गाय का दूध जो है और गाय के जो पदार्थ जो हैं ये अमृत हैं। एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा, आप सबने सुना है बीरबल और अकबर, तो अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल सबसे उत्कृष्ट सबसे अच्छा दूध कौन सा होता है जिसमें सब तरह के पोषक तत्व हों जो वास्तव में मानव के लिए लाभदायक हो। बीरबल ने कहा भैंस का दूध सबसे अच्छा। तो अकबर कहने लगा, बीरबल ये तो क्या कह रहा है, आप तो शास्त्रों में निपुण हैं, आपको सब शास्त्र मालूम हैं, फिर भी तू कहता है कि भैंस का दूध है दूध सबसे अच्छा होता है। फिर से पूछा, ठीक ठीक बताओ बीरबल, आपके ही शास्त्र कहते हैं कि कि गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। बीरबल कहता नहीं, भैंस का दूध सबसे अच्छा है। तो अकबर ने जब बार बार यह प्रश्न पूछा तो बीरबल ने आखिर में कहा, भैंस का दूध चाहे सबसे अच्छा हो लेकिन गाय का जो दूध है वो दूध नहीं है, वो अमृत है, अमृत है। इसलिए गाय का दूध जो कहते हैं वो दूध नहीं मानते, वो अमृत है, अमृत। और इसको पीने से, दूध को पीने से शरीर तो तंदुरुस्त रहता ही है, पर हमारे दिमाग में भी जो सेल्स हैं उनको कहते हैं मोटर सेल्स, न्यूरॉन्स। अगर कोई भी गाय का दूध पिएगा तो उसको कोई दिमाग की बीमारी कभी नहीं होगी, दिमाग की बीमारी कभी भी नहीं होगी अगर कोई गाय का दूध पिएगा। क्योंकि कई और बीमारियां होती हैं और दिमाग की भी बीमारियां होती हैं जो अन्य दवाइयों से या अन्य पदार्थों से इलाजित हो सकती हैं, लेकिन एक खास दिमाग की बीमारी है न्यूरॉन्स में कमी, वो खाली गाय के दूध से ही ठीक हो सकती है। और गाय का दूध जो है वो हमारी माता के दूध के समान होता है। माता हमारी जो है उसका दूध के समान ही होता है गाय का। इसलिए गोरक्षा करनी बहुत ही आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस गोरक्षा को बहुत महत्व दिया। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी ने वाणिज्यन कृषि गोरक्षा पर बहुत ध्यान दिया। कुछ दिन पहले हम इको विलेज में थे, वहाँ में हमने देखा है कि गायों की इतनी अच्छी रक्षा कर रहे हैं, पालन हो रहा है और गायें इतनी खुश हैं। तो गायें अगर खुश रहेंगी तो हमारे सब जो समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगी। किसी न किसी तरह से हमारे को गायों की रक्षा करनी है। अगर गायों को पाल सकते हैं बहुत अच्छा, कम से कम गायों के गुणों का प्रचार करो। अगर गाय नहीं पाल सकते कम से कम उनके लिए व्यवस्था बनाई जाए, उनके लिए चारा दिया जाए और चीज़ें जो ज़रूरी हैं गौशाला के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी हैं गौशाला के लिए। आराधनम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां स्मर्चनम। ये श्लोक महादेव जी, शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि आराधनम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम, सब तरह की आराधनाओं में से विष्णु आराधना परम, विष्णु आराधना परम। क्योंकि देवी ने यह प्रश्न पूछा था कि अन्य पुराण अपने ही इष्ट देव की प्रशंसा करते हैं। कोई कहते हैं कि शिव जी ही सबसे महान है, कोई कहते हैं ब्रह्मा जी, कोई गणेश जी, कोई देवी को सबसे ऊंचा मानते हैं। देवी पूछती हैं कि मैं भ्रमित हो गई हूँ, कौन सबसे श्रेष्ठ हैं, किसकी आराधना करनी चाहिए। तो शिव जी कहते हैं कि आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधना पर, विष्णु की आराधना सच। और अगर विष्णु से भी ऊंचा कुछ चाहिए तो तदीयानाम स्मरचनम, तदीयानाम, तदीयानाम कहते हैं जो विष्णु भगवान के साथ संबंधित हो, जैसे तुलसी महारानी जी हैं, गौएं हैं, गंगा जी, जिनका श्री विष्णु या कृष्ण जी से संबंध है, तदीया नाम स्मरचनम, वो और भी ऊंचा है। जब भी श्री कृष्ण जी वृंदावन में थे तो पहली बार जब भी बछड़ों को लेकर जाने का था, जब भी उनकी आयु हो गई थी बछड़ों को लेकर जाने के लिए, तो मैया यशोदा ने पहले दिन में लाला कृष्णा गोपाल को कहा, एक छत्र ले जाओ आप, धूप होगी रास्ते में, और पादुक दिए, आप पादुक डालकर ही जाना, रास्ते में बहुत कांटे होंगे, पत्थर होंगे, तो आप ये पादुक ले जाओ और ये छत्र भी ले जाओ। उस समय गोपाल जी कहते हैं, मैया मेरे लिए तो आपने प्रबंध कर दिया है पादुक का और छत्र का, तो ये बेचारे बछड़ों के लिए क्या है, उनके लिए भी तो आप कुछ प्रबंध करो ना, उनके लिए भी पादुक दो और उनके लिए भी छत्र दो। तो मैया यशोदा कहने लगी, मेरे लाला देखो इतने पादुक कहाँ से लेकर आऊँ, इनके चार पैर हैं, एक एक गाय को दो जोड़े चाहिए, इतने इतना व्यवस्था नहीं मैं बना सकती। तो उस समय श्री कृष्ण जी लाला थे, लाला कहने लगे कि अगर उनके लिए व्यवस्था नहीं हो पाती तो मैं भी नहीं ब्रज में ये पादुक, और जब तक वो ब्रज में रहे गोपाल उन्होंने पादुक नहीं डाला। और उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक बोला, धर्म रक्षति इति रक्षिता, धर्म रक्षति इति रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्म का सिंबल, धर्म का प्रतिनिधि क्या है, बैल, बैल, इसलिए बैल को कई बार धर्म भी कहते हैं, धर्म रक्षति इति रक्षिता। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें इस कौन में, और जब भी श्रील प्रभुपाद जी के जो इस्कॉन के पर्पसेस, सेवन पर्पसेस ऑफ इस्कॉन, इस्कॉन के मकसद क्या हैं, जो ओरिजिनल उन्होंने बताए थे वो और भी विस्तार से बताए गए थे। अभी तो हमको सात पर्पसेस से हमको मालूम पड़ता है, ओरिजिनली प्रभुपाद जी ने और भी लिखे थे, 14 लिखे थे, उसमें गौ रक्षा पर बहुत ध्यान दिया था प्रभुपाद जी ने। और चैतन्य महाप्रभु जी भी एक प्रसंग मैं सुनाना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी वैसे कई लीलाएँ हैं, एक चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जी अपने ही घर में बैठे थे और उनके भक्त भी थे, माता सची रानी भी थी, तो महाप्रभु जी सुनाने लगे कि उनके भक्त उनको इतने प्रिय हैं, महाप्रभु जी अपने भक्तों का हमेशा चिंतन करते हैं। भगवद गीता में भी ऐसा ही उल्लेख है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अभिनिक्त उक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी भगवान की सेवा में लगा हो, कृष्ण जी कहते हैं भगवद गीता में, यचन परियुपासते तेषां नित्य योग क्षेमं वहाम्यहम्। उसकी जो भी जरूरतें आवश्यकताएं श्री कृष्ण जी व्यक्तिगत तौर पर रखते हैं देखते हैं। तो महाप्रभु जी ने भी यही कहा अपने भक्तों से, उनके भक्त वहाँ में उपस्थित थे, कि उनको उनके भक्तों का आहार, सोने का व्यवहार सब बहुत चिंता रहती है। फिर अचानक से महाप्रभु जी माता सच्ची को पूछने लगे, माता क्या आप मुझे एक वरदान देंगी? तो माता सच्ची ने तो कहा, बेटा आप तो मुझे जान से भी प्रिय हैं, प्राणों से भी प्रिय हैं, जो कुछ भी आप मांगेंगे हम मैं दूंगी। तो उन्होंने कहा महाप्रभु जी ने, माता मैं यही वरदान चाहता हूँ आपसे कि आप एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। उन दिनों में यह रीति थी कि अगर किसी औरत का पति जीवित होता था तो उसको एकादशी का व्रत नहीं रखना पड़ता था, अगर विधवा होती थी तो एकादशी पालन करनी पड़ती थी। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं, चाहे आपका पति जीवित हो या विधवा हो, आप ये एकादशी का व्रत जिसमें कोई तरह का अन्न नहीं लेना ग्रहण करना वो पालन करना। तो सच्ची रानी माता ने यह मान लिया और जैसे ही उन्होंने ये स्वीकार कर लिया तो महाप्रभु जी सब भक्तों के संग में उनके उपस्थिति में कहने लगे, अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो सब भक्तों भक्त बहुत चौंक गए, ये महाप्रभु क्या कहते हैं, ये घर में ही हैं, अपने ही घर में हैं। सच्ची रानी भी वहीं हैं, सब भक्त वहीं हैं। और ये अचानक से महाप्रभु जी कहते हैं, कह रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूँ। तो कोई समझ नहीं पाया और ना ही किसी में साहस के महाप्रभु से पूछें, क्योंकि यह मर्यादा की बात है, इतने महान महाप्रभु हैं उनसे कैसे ये पूछें। तो आपस में उन्होंने गोष्ठी की कि ये महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अपने ही घर में हैं, सच्ची रानी भी घर में है, सब भक्त घर में हैं, तो ये महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हम समझ। फिर उन्होंने कहा, क्यों ना हम मुरारी गुप्त से पूछें। मुरारी गुप्त कौन है? हनुमान, हनुमान के अवतार हैं। हनुमान जी को भगवान के हृदय की बात पूरी मालूम है। तो उन्होंने मुरारी गुप्त से पूछा, मुरारी गुप्त आप हमें समझाओ, ये महाप्रभु जी का कहना हम समझ नहीं पा रहे, घर में ही बैठे हैं और कह रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, ये क्या, इसकी रहस्य क्या है? तो मुरारी गुप्त ने कहा कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जी का घर उनके भक्तों का हृदय है, उनके भक्तों का हृदय है, वो अपने भक्तों के हृदय में ही रहते हैं, वास करते हैं। और यही बात श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु भी नौवें स्कंद में दुर्वासा मुनि से कहते हैं कि साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयस्त्वहम मत अन्यत न जानती ना तेभ्यो मनागपि। साधु मेरे हृदय में रहते हैं भगवान कहते हैं ना दुर्वासा मुनि को, साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ, मेरा वास साधुओं का हृदय है। मत अन्यत ना जानती ना तेभ्यो मनागपि, मेरे सिवाय साधु कुछ नहीं जानते, और मैं भी साधुओं के सिवाय कुछ नहीं जानता। तो ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ये घटना हुई उधर, फिर भक्त सब समझ गए। एक और बार चैतन्य महाप्रभु जी को उनके कुछ भक्तों ने निमंत्रण दिया, प्रभु आज आप हमारे घर में आकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। कई बार हम बुलाते हैं ना साधुओं को, घर में बुलाते हैं, प्रसाद के लिए निमंत्रण देते हैं। महाप्रभु कहने लगे, मैं तो खाली लाखपतियों के घर ही जाता हूँ, मैं लाखपतियों के घर ही प्रसाद लेता हूँ। तो ये भक्त बहुत चौंक गए, कुछ घबरा से गए कि लाखपति, ये लाख की बात करते हैं, हमारे पास 100 रुपये नहीं है, ये लाखों की बात तो छोड़ो। फिर महाप्रभु जी ने देख लिया कि ये भक्त थोड़े से घबराए हुए लग रहे थे, तो महाप्रभु जी कहने लगे, वास्तव में लाखपति वो है जो 1 लाख नाम जपता है भगवान का, वो लाखपति है 1 लाख नाम जपता है। ये बिरला टाटा, लक्ष्मी मित्तल, ये जो है बिल गेट्स, वो भगवान के अंदाज में लाखपति नहीं है। लाखपति, लाखपति 64 राउंड होते हैं। प्रभुपाद जी ने जानते हुए कि हम इतना नहीं कर पाते, उन्होंने हमारे को 16 माला जो कि 25,000 हो जाते हैं, है ना, तो कम से कम उतना तो हमको करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी दर्शन दे रहे थे, कई भक्त उपस्थित थे वहाँ में, और प्रभुपाद जी नियमों का पालन करने के बारे में ही कह रहे थे। तो कुछ भक्त थोड़े से ऐसा लग रहे थे कि ये बहुत कठिन है, प्रभुपाद जी समझ गए सब। थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, पहले 64 राउंड स्टार्टिंग में कहा था, 64 राउंड्स। फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि पूरा दिन लग जाता है फिर भी नहीं कर पा रहे, फिर 32 राउंड कर दिया, 32, फिर बाद में 16 माला कर दिया। जब ही दर्शन देकर प्रभुपाद जी अपने भजन में, भजन स्थल में गए, तो कुछ भक्तों ने पूछा, प्रश्न किया, प्रभुपाद अगर हम ये पूछ सकते हैं, पहले आपने काफ़ी ऊंचा स्टैंडर्ड दिया और फिर आपने कम कर दिया, ये कैसे, इसकी क्या वजह है, क्या आप बताएंगे थोड़ा? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उनके गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और कोई भी भक्ति के घर में आए तो सामने के द्वार से आता था, सामने का द्वार किसी भी घर का बहुत सुरक्षित रहता, जो बहुत ही सिंसियर हो, अगर किसी ने चोरी करना हो तो वो पिछले द्वार से आएगा। प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने पिछला द्वार से आपको अंदर घुसा दिया है, मेरे पास पिछले द्वार की चाबी है और मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, जब ही आप आएंगे आप सबको अंदर घुसा दूंगा। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, हमें प्रभुपाद जी के प्रति हमेशा ऋणी मानना चाहिए, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया है उसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। चाहे हम कितनी भी सेवा क्यों ना करें, कितने भी मंदिरों का निर्माण क्यों ना करें, कितनी भी पुस्तकों वितरण क्यों ना करें और अन्य सेवाएं कितने भी भक्त क्यों ना बनाएं, लेकिन जो प्रभुपाद जी के प्रति हमारा ऋण है वो हम कभी नहीं चुका पाएंगे, एक तो इंडिविजुअली व्यक्तिगत के रूप में और दूसरा पूरी संस्था के माध्यम से भी हम ये ऋण नहीं चुका सकते। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि अगर हम उनके प्रति अपना ऋण समझते हैं, अगर हम वास्तव में ऋणी मानते हैं प्रभुपाद जी के प्रति हमने अपने आप को, तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप प्रचार कीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा जितना जैसे वो इतने उत्साह के साथ प्रचार करते हैं वैसे ही वो प्रचार हमको भी वो प्रचार करना है। श्री प्रभुपाद जी ने एक ऐसा चमत्कार किया है, ये अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, और छोटे से थोड़े से समय भी में ही इतना उन्होंने प्रचार किया। हालांकि कई वैष्णवों में, खासकर गौड़िया वैष्णवों में, उनको इतना सम्मान नहीं मिला। एक छोटा सा प्रसंग सुनाकर फिर आज का प्रसंग हम समापन करेंगे। एक ऐसा प्रसंग श्रील प्रभुपाद जी के मुखारविंद से ही आया है, जिनके पास वेदाबेस है वो आप इसको और विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत सुंदर प्रसंग है जिससे हमको अच्छा उपदेश मिल सकता है। तो प्रभुपाद जी जब भी अमेरिका से प्रचार कर कर भारत लौटे तो कई उनके गुरु भाई जो थे, कई तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा किया, बहुत प्रभुपाद जी को सम्मान देने लगे। लेकिन कई गुरु भाई में इतना उन्होंने इतना प्रभुपाद जी को सम्मान नहीं दिया और ना ही माना कि ये महान कुछ कार्य है। उनका कहना था कि ये तो होने का ही था, प्रचार होने का ही था। क्यों होने का ही था? क्योंकि चैतन्य भागवत में लिखा है, क्या लिखा है, पृथ्वी ते अच्छे यत्न नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोरे नाम। इस पृथ्वी में जितने देश नगर और ग्राम हैं उन सब में उनके नामों का प्रचार होगा। तो ऐसा कहकर ही कुछ गुरु भाई प्रभुपाद जी के टाल दिए थे कि ये जो प्रभुपाद जी ने, वो प्रभुपाद जी को स्वामी महाराज कहते थे क्योंकि प्रभुपाद जी का संन्यास का नाम था स्वामी महाराज। उनका स्वामी महाराज ने जो किया है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, वो उनका कहने का, हालांकि ये सबसे बड़ा चमत्कार है सृष्टि में, पर उनका अलग सा अलग सी दृष्टि थी। तो जैसे वो कहने लगे कि इतना बड़ा नहीं है चमत्कार, तो प्रभुपाद जी के ही मुखारविंद से ये प्रसंग सुन निकला है। प्रभुपाद जी ने इतिहास से एक उदाहरण दिया, वो उदाहरण था कोलंबस का। कोलंबस एक डिस्कवर था जिसने अमेरिका और कई जगह ढूंढी और उसने ये भी सिद्ध किया कि धरती गोल है ना कि चौरस। पहले माना जाता था कि ये चौरस है, अगर हम किनारे से आगे चल गए तो गिर जाएंगे, कहाँ गिरेंगे नहीं मालूम था, लेकिन ऐसा उनका विश्वास था पहले कि ये धरती जैसे ये मेज है, चौरस है या चारकोन है। कोलंबस ने सिद्ध कर दिया कि ये चौरस नहीं है, धरती गोल है। वैसे हमारे शास्त्रों में लाखों वर्ष पहले से लोगों को मालूम है, पर मॉडर्न सिविलाइजेशन को नहीं मालूम था। तो उन्होंने ये सिद्ध किया और अमेरिका भी डिस्कवर किया। जब ये अमेरिका खोज कर वो वापस स्पेन में पहुंचा तो लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। उन समय 500 वर्ष पहले छोटे छोटे जहाज में जाकर उसने खोजा अमेरिका को। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कोलंबस की बुद्धि भी श्री कृष्ण जी नहीं दी थी, नहीं तो इतना बड़ा काम नहीं कर पा सकता था। तो उसके समान में एक भंडारा रखा गया, फीस्ट रखा गया। वहाँ में स्पेन के राजा फर्डिनेंड और क्वीन महारानी इसबेला भी उपस्थित थे। सब लोग प्रशंसा, खूब प्रशंसा करते थे और प्रशंसा के योग्य था भी कोलंबस। लेकिन उस भंडार में ही एक व्यक्ति था जो कोलंबस के प्रति बहुत द्वेष करता था और बोला, आप लोग क्यों इसको इतना सम्मान करते हैं, दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। इसने जो किया हम सब कर सकते थे, हम स्पेनिश लोग तो सब बहुत ही वीरवान शौरवीर हैं, क्या बड़ा काम कर दिया इसने, हम सब कर सकते थे। कोलंबस ने कुछ ध्यान नहीं दिया। जब ये हाथी जाता है ना, बहुत से कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी परवाह नहीं करता, चलता रहता है। तो ऐसा महान व्यक्ति कोलंबस ने कहा, सोचा मेरी प्रतिष्ठा पर कुछ असर नहीं पड़ता, इनको बकने दो, जो भी बकता कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कोलंबस ने इसको एक सबक सिखाना था। और उसमें कोलंबस ये उबाले हुए अंडे खा रहा था, तो कोलंबस ने एक अंडा लिया और सबको चुनौती दी कि इस अंडे को आप सीधा ऐसा कर खड़ा करो। हॉरिजॉन्टली तो इजी है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सीधा अपने ही बल पर सीधा कर खट दिखाओ। सबको पूछा, सबने मना किया, हम नहीं कर सकते। तो फिर इसने जो बहुत ज़्यादा द्वेष करता था उसको, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तुम इसको सीधा खड़का करके दिखाओ। वो कहने लगा, नहीं मैं नहीं कर सकता। और वो चुनौती देने लगा कोलंबस को, कोलंबस तुम भी नहीं कर पाएगा, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। कोलंबस ने कहा, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। उसने क्या किया, उबाला हुआ अंडा था, एक चाकू लिया, नीचे से थोड़ा सा उसको समतल कर दिया, ये समतल हो गया तो अंडा अपने आप खड़ा हो गया सीधा अपने ही बल पर। तो सब लोग कहने लगे, ये तो बहुत आसान है, हम सब कर सकते थे। तो कोलंबस ने कहा, जब ही मैंने आपको दिखा दिया तभी आप बोल रहे हैं कि सब लोग कर सकते थे, इससे पहले आपने कुछ नहीं सोचा। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक चमत्कार किया। हालांकि और लोग कहते हैं कि हम भी कर सकते थे, अगर कर सकते होते तो करते, पर लेकिन कर नहीं पाए। हमेशा श्रील प्रभुपाद जी की हमारे को शरण लेनी चाहिए और हमको अपने आप को ऋणी मानना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी कहने लगे कि मुझे एक रोग है, व्याधि है। तो लोगों ने पूछा, स्वामी जी क्या व्याधि है आपको? तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि मेरी व्याधि यह है कि मैं कभी भी छोटा नहीं सोच सकता, मैं हमेशा बड़ा ही सोचता हूँ। तो ये अभी बहुत भाग्य से यह बीमारी और भक्तों को भी लग गई है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बीमारी है। इट इज़ अ हेल्दी डिजीज, हेल्दी डिजीज के बहुत से भक्तों को अभी बहुत उत्साह हो रहा है और बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं स्टार्टिंग में, मैंने जैसे कहा कमल लोचन प्रभु जी और अनेक भक्तों ने बहुत सुंदर ये प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट किया है, काफ़ी अच्छी प्रगति हो रही है और सितंबर 27-25 को ओपन, सितंबर 25 को ये प्रोजेक्टेड है ये ओपन होगा। श्री प्रभुपाद जी में ये गुण था कि वो अपने भक्तों को खूब अच्छी ट्रेनिंग देते थे। एक सोशियोलॉजिस्ट, काफ़ी प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट, उसने कहा अगर आपका प्लानिंग, आप हिंदी में क्या कहेंगे प्लानिंग को,
योजना,
वेरी गुड, अगर आप खाली एक वर्ष की योजना बनाना चाहते हैं तो खाली घास ही उगा दीजिए, घास चलेगा। अगर आप 20 वर्ष की योजना चाहते हैं तो वृक्ष उगाइए, क्योंकि वृक्ष को 20 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी योजना चाहते हैं जो सदियों तक चलेगी तो आप इंग्लिश में कहते हैं प्लांट मैन, यानी कि आदमियों को प्लांट करिए। और प्रभुपाद जी ने वही किया, भक्तों को इतनी ट्रेनिंग दी और आगामी 100 सदियां कब सको, 10,000 ईयर्स, 10,000 वर्ष तक ये मूवमेंट चलती रहेगी। श्रील प्रभुपाद की जय। आज यहाँ में संपन्न करेंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।